सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे पावर ऑफ एलिमिनेशन के तहत जो सबसे पहला इसका आधार है कि टॉपिक की समझ कैसे इसमें हमारी मदद करती है, इस विषय पर बात करूंगा और बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले एक दो जो बहुत ही छोटी छोटी खबरें हैं, आइए उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, अखबारों में आपने भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के लागू हो जाने के बारे में पढ़ा होगा। बस मैं केवल स्मरण भर दिला रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि इस विषय पर डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार के साथ बातें की थी, और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो हम आपको मंथली कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स पर, उसके तहत भी भारत ऑस्ट्रेलिया में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उस पर बहुत ही विस्तार के साथ बातें की गई हैं। और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले, प्री और मेन्स दोनों ही दृष्टि से। अभी अखबारों में आपको नए वर्ष की घटनाओं का खूब सारा कलेक्शन पढ़ने को मिल रहा होगा, और जब तक नया वर्ष आ नहीं जाता तब तक मिलेगा। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, कौन कौन सी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं घटी, कौन से खेल हुए, कौन सी फिल्में आई, कौन से सेलिब्रिटीज हुए, क्या क्या विवाद हुए, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, इस तरह की ढेर सारे घटनाओं का कलेक्शन आपको मिलेगा। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट उनके प्रति बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हैं कि अरे साल भर का कलेक्शन मिल रहा है, ये तो हमारे करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी करेगा, इन्हें पढ़ो, थोड़े से कुछ नोट भी कर लो, अखबारों की कटिंग्स भी काट काट करके रख लो पूरे पूरे पृष्ठ की, भले ही आप बाद में कभी भी उसे ना देख पाए। पहली बात तो यह है कि इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, यहां दो बातें हैं। नंबर वन, कि अगर आप लगातार अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन रहे हो, अगर ये नहीं तो और भी दूसरे इस तरह के प्रोग्राम्स आने लगे हैं, आप उन्हें सुन रहे हो, तो आपको बिल्कुल इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इनकी कटिंग्स रखें, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके जहन में है। क्योंकि दोस्तों, अपने दिमाग को जबरदस्ती बोझिला बना देने के सिद्धांत पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी मेरा विश्वास नहीं है। आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही फोकस्ड तरीके से और ऑलमोस्ट सेलेक्टेड तरीके से होनी चाहिए, नो डाउट कि सिलेबस को कवर करते हुए। मैं सिलेबस छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्री एग्जामिनेशन के अपने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें प्रीवियस ईयर्स के, तो आप पाएंगे कि उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का दौर खत्म हो चुका है। पहले इस तरह के प्रश्न आते थे, अब वे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जब आप मैगजीन्स खरीदते हैं, मंथली मैगजीन्स लेते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, तो उनमें इस तरह के कलेक्शंस मिलते हैं कि महीने भर में कौन कौन से अवार्ड दिए गए, फालतू के नाम भी होंगे, कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए, नियुक्तियां हुई, फालतू के नाम होंगे, किन किन की डेथ हुई, वो फालतू के नाम होंगे, उनसे कभी कुछ नहीं आता है। लेकिन चलिए, मैगजीन वाले अपने ढंग से अपने प्लान करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, अब ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसमें से अपने लिए सही चीजों को निकाल पाए। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट यही है कि चूंकि उसमें से सीधे सीधे कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे छोड़ ही दें। लेकिन यदि आपकी उसमें रुचि है तो आप उसे देख लें, और केवल एक जैसे होता है ना सरसरी निगाह मारना, बस सरसरी निगाह मार लें, उसी से आपका काम चल जाएगा। बल्कि कुछ घटनाएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय घटनाएं सरसरी निगाह मार लें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सरसरी निगाह मार लें, बस खत्म हो गई बात, आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। तो खासकर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आप सबको, जो भी मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैं सही समझता हूं, निर्देश देने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे मुख्य विषय पर। आपको मालूम है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन पर हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ बातें की हैं, और अब मैं सीधे उसके व्यावहारिक पक्ष पर आ रहा हूं कि वो कौन से आधार हैं या कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके आधार पर आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके अपने प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के विचार को इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस तरह के कुछ आधारों की चर्चा करूंगा। उसमें जो सबसे पहला आधार है वह है टॉपिक की समझ। इस पर अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से बातें हो चुकी हैं, टॉपिक की समझ। खासकर जब मैं ये कहता हूं कि आपको फोकस्ड तरीके से पढ़ना चाहिए, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि समझना है, तो कहीं ना कहीं वह इसी से जुड़ी हुई बात है। लेकिन चूंकि मुझे किसी भी टॉपिक को संपूर्णता के साथ लेकर चलना है और आपके सामने उसे पूरी तरह से संपूर्णता में ही परोसना है, तो इसकी चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूं। इसके लिए जो मैं प्रश्न ले रहा हूं अपनी बात को समझाने के लिए, वह है सी सेट है मेरे पास। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर मैं कभी तो आप मान करके चलिए कि मेरे पास जो पेपर का सेट है वो सी का है, उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल मैच करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास दूसरा सेट होगा तो आप उसमें उसे मैच कर सकते हैं। सी सेट का है क्वेश्चन नंबर 19वां। आइए देखते हैं कि जब मैं कहता हूं कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तो उसका क्या मतलब है। 19वां प्रश्न है और अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और यदि आप कर सकें तो बेहतर होगा कि मैं जब प्रश्न पढ़ रहा हूं तो आपके सामने आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो खुला हुआ हो और आप उस क्वेश्चन को मैच करते चलिए। इससे आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज तैयार होगी कि और आपको मेरी बात को समझने में मदद भी मिलेगी, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि रिटन वर्ड्स जब आप देखते हैं तो उसका असर बिल्कुल अलग ही होता है। प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपका दिमाग इस बात का अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि जैसे ही ऊपर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, विचार कीजिए और कथनों पर फलाना फलाना, तो आपके दिमाग में इंप्रेशन इमर्ज हो जाने चाहिए कि अच्छा वो किस तरीके का फ्रेम इसका होगा, इस प्रश्न का। तो पहला स्टेटमेंट है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, राइट? जो दूसरा स्टेटमेंट है वह है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव सारे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। यह सेकेंड स्टेटमेंट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वह है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ये तीन स्टेटमेंट है, राइट? इंग्लिश में आपको अगर सुविधा हो तो आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, मैं जानबूझकर के यहां इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, बेवजह एक तरह से रिपीटेशन होगा और समय भी लगेगा, वो काम तो आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। अब आइए इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है तो वन्य जीव संरक्षण पर और वन्य जीव संरक्षण के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं उन पर, लेकिन उन कानूनों का सार है, इसमें किसी पर्टिकुलर एक्ट का नाम नहीं दिया गया है कि इस सन के एक्ट में ये कहा गया है। देखिए, वो जानना क्या चाह रहा है, वो जानना ये चाह रहा है कि वन्य जीव के संरक्षण के बारे में आपके दिमाग में किस तरह की अवधारणाएं बनी हुई हैं। आपने दुनिया भर के एक्ट पढ़े होंगे जो भी संरक्षण को लेकर के बना हुआ हो, और भी दूसरे उपाय भी आपने पढ़े होंगे कि सरकार ये करने जा रही है, ये करने जा रही है, उसने अभ्यारण्य बना दिए हैं, उसने नेशनल पार्क बना दिए हैं, फलाना फलाना ये सब किया हुआ है। इस तरह की बातें आप पढ़ चुके हैं। अखबारों में आप ये भी पढ़ते हैं कि अगर किसी एरिया में कोई बाघ निकल गया है या टाइगर चल गया है तो उसके बारे में क्या किया जा रहा है, कैसे होना चाहिए, इस तरह की घटनाएं भी आप सुनते हैं, बकायदे अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो अब इन सबको पढ़ने, देखने, सुनने के बाद आपके दिमाग में किस तरह की अवधारणा बनी हुई, बस उसे वो चेक करना चाह रहा है, और ये जो आपके दिमाग में अवधारणा बनी हुई है ये सही है या नहीं है, राइट? अब आप देखिए कि इस अवधारणा के आधार पर आपको इसके आंसर देने हैं। मुझे लगता है कि जब आप सीधे सीधे इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो शायद शुरू में आप थोड़े से विचलित हो जाएं। प्लीज एक काम आप सब करें कि जब भी आप प्री के प्रश्न पढ़ते हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज के ही प्रश्न क्यों ना पढ़ रहे हों, तो प्रश्न पढ़ने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी बनती है, आपके दिमाग में जिस तरह के विचार उभरते हैं, जिस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं, आप उन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें, इस तरीके से कि आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत कठिन है। आपको ये भी लग सकता है कि अरे ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको ये भी लग सकता है कि ये तो जटिल है। आपको ये भी लग सकता है कि नहीं, मैंने पढ़ा तो है लेकिन यार ठीक ठीक कुछ बात बन नहीं रही है। या आपको यह भी लग सकता है कि नहीं नहीं इसे तो मैं सॉल्व कर लूंगा, इतना कठिन नहीं है। किसी भी तरह के इस तरह का कोई विचार आपके दिमाग में डेफिनेटली इमर्ज होता होगा और वही आपके प्रिपरेशन की क्वालिटी को बता देता है। प्रिपरेशन की क्वालिटी यानी कि जिस टॉपिक पर अभी प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक की कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है। अगर आपके अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि पहला थॉट ये आए कि यार प्रश्न थोड़ा सा जटिल सा तो लग रहा है, थोड़ा सा उटपटांग सा भी लग रहा है, कुछ कठिन सा भी लग रहा है, लेकिन मैं सॉल्व कर लूंगा, देखते हैं। आप सरेंडर करने की मुद्रा में नहीं होंगे कि नहीं नहीं भैया ये तो बनेगा ही नहीं, ये कहां से आ गया, ये क्या पूछ लिया, इसमें तो एक्ट का नाम ही नहीं है, जबकि इस सन में एक्ट बना हुआ था तो हम कैसे इसका जवाब देंगे, इतने सारे एक्ट हम याद करेंगे, ये भी कोई प्रश्न पूछने का तरीका है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो जैसे ही प्रश्न को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, मान करके चलिए कि वह विचार उस टॉपिक के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं या प्री के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका जो परीक्षण है वो यहां से शुरू होना चाहिए। दोस्तों आप सब इसे अपने अपने लेवल पर करें। अभी मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, राइट? आप सब अपने अपने पॉइंट्स लिख लें। जी हाँ, आप ये मान करके चलिए कि हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से और हम कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम लोग डेफिनेटली इसी पर बातें करेंगे, आज बस इतना ही। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। मेरे पास एक मेल आया है निधि विश्वकर्मा का, जो हमारे 9th बैच की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने सूचित किया है कि देशभक्ति की कविताएं लिखने संबंधी कोई एक प्रतियोगिता जैसी हुई थी, उसमें निधि विश्वकर्मा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो निधि, आपकी सफलता के लिए आपको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत और बहुत बधाइयां, नो डाउट मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से भी। आपने उसमें एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट मेंशन किया हुआ है और वो ये है कि कुछ समय पहले आपके पिता नहीं रहे और आप चाहती थी कि अपने पिता के लिए कुछ कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिस पर उन्हें गर्व हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सफलता को देखने और महसूस करने के लिए अब उस धरती पर मौजूद नहीं है। आपने बहुत प्यारे भरे अंदाज में ये कहा कि सर उनका नाम राधे श्याम विश्वकर्मा था। तो आपके माध्यम से डेफिनेटली मैं राधे श्याम विश्वकर्मा जी के आत्मा के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये जो सफलता है यह सफलता उन तक पहुंचाकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बधाई और एक बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों में एक और नाम है श्रीकांत राय बरेली उत्तर प्रदेश का, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।